संन्यास एज में है वो, जहां तक मैं बता रहा हूँ संन्यास एज में है, फिर भी पूरे भारत में घूम घूम के आप गीता और भागवतम का प्रचार करते हैं, और आप श्री राधा कृष्ण के युवती हैं, आपने 50 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, और आप हिंदी में, बंगाली में, इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज में अच्छी तरह लेक्चर दे सकते हैं। आज मैंने रिक्वेस्ट किया है सतली स्वामी जी से कि हमको हिंदी में लेक्चर दें, तो बड़ी कृपा होगी। स्वामी जी ह्यूस्टन में 6 जून से पधारे हुए हैं। एक अनाउंसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं, वो महात्मा गांधी सेंटर में 12 से 16 जून तक स्वामी जी भागवत कथा करेंगे, और टाइम है 6:30 PM। आप सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि अपने फ्रेंड्स को बताएं और उस कथा का आप लाभ उठाएं। ये बहुत रेयर चीज है हमारे आपके लाइफ में कि ऐसे महात्मा पधारे हैं, और बड़ी भाग की बात है, भगवान की कृपा है कि ऐसे महात्मा पधारे हैं। अब स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि हमको कुछ मार्गदर्शन कराएं। स्वामी जी
ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतञ्जलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णे नमः गौरक्षिते यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपे च कृत्यं द्वैपायनो विरहता तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं गुह्मानुतु। मैं श्री वृंदावन धाम में से आया, मथुरा में भी आश्रम है किंतु वृंदावन में ही आता हूं। वहां की भूमि बड़ी अलबेली है, जितने भी भक्त हैं वृंदावन में जाना दर्शन करना बहुत ही पसंद करते हैं, चाहते हैं कि जीवन का अंतिम क्षण वृंदावन में ही बीते। मैं श्रीमद् भागवत से 2-4 उपदेश और कृष्ण की लीला की झांकियां मैं आप लोगों को दर्शन कराना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि महाराज परीक्षित को अभिसंपात था कि 7वें दिन वो मरेंगे, सांप डसेगा वो मरेंगे, इसलिए उन्होंने घर बार और राज्यपाट छोड़कर के गंगा के किनारे आए, और खाना पीना छोड़कर के प्रयोग वैष्णव पर बैठ गए। प्रयाग को वैष्णव में नहीं होता है, अब मैं कुछ अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने सोचा ये अभिसंपात नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है, स्वयं भगवान आए हैं मेरे वरदान के रूप। और देखते देखते हजारों 88,000 ऋषि महर्षि, जिनमें नारद, व्यास जी, पराशर, गौतम, वशिष्ठ, कभी हबी, अंतरिक्ष इत्यादि महाअनुभवी परम मुक्त, ये सब लोग वहां पर उपस्थित हो गए। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, संग इत्यादि करने के लिए, बुलाने के लिए, लेकिन कैसी उस समय की विद्या थी, सभी लोग मिनटों में पहुंच गए। कोई कैस्पियन सागर के पास में था, कश्यप ऋषि, वो भी भाग के अंदर गई थी उसमें। मंगोलिया में रहने वाले मंगल इत्यादि ऋषि लोग कहां कहां, सभी लोग वहां पर मिनटों में पहुंच गए। बड़ी भारी सभा हुई। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को, जो नंगे धड़ंगे आए थे, जिन पर स्त्रियां ढोल डाल रही थी, उनका भीतर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था धूल के वजह से, न जाने स्नान कितने दिन किया या नहीं किया। जन्मे तो उनकी नाड़ी कटी की नहीं कटी, उस समय में भी स्नान करके पवित्र हुई या नहीं ऊपर से मालूम नहीं पड़ता, किंतु चित्त सब समय कृष्ण में रम रहा, जीवन मुक्त ये वहां पर उपस्थित हुए। कैसे जीवन मुक्त हैं? जन्म होने के बाद ही में वो घर से निकले, व्यास जी उनके पीछे पीछे हा पुत्र कह रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उत्तर दिया, किंतु जंगल के जो वृक्ष थे उन्होंने प्रतिध्वनि के रूप में कहा, कौन किसका पुत्र, कौन पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र कह रहा है। थोड़ी देर के बाद में आगे बढ़ गए, पीछे से व्यास देवी उनकी पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद में देखा बहुत ही सुंदर एक सरोवर, बहुत हरे भरे वृक्ष हैं, बेली चमेली इत्यादि के फूल हैं, पक्षी कलरव कल रहे, और उसमें देखा कुछ ज्योति स्त्रियां किशोरियां उसमें स्नान कर रही हैं, कपड़े घाट पर रख दिया है और स्नान कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी उसी के पास से निकल करके चले गए, वो अपनी खेलती रही हैं, स्नान करती रही सखियां सहेलियों के बीच में, और जिस समय वो पार करके चले गए, व्यास जी पीछा करते हुए वहां जब पहुंचे, उनके केस श्वेत, आंख की ये जो भुवाएं हैं वो भी श्वेत, उम्र न जाने कितने हजार वर्ष की। और जब वो आए तो वो लज्जित होकर के सरोवर से निकल करके अपने कपड़ों को धारण करके और उनको दूर से प्रणाम करी। व्यास ने कहा कि बड़े बड़ी विचित्र बात, हमारा लड़का 15 वर्ष का 16 वर्ष का किशोर, नंग धड़ंग, कोई कपड़ा भी पहने नहीं, और उसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मैं उसके तुम लोगों का पिता का पिता का पिता का कितना बहुत ऊपर का बूढ़ा एकदम जरट, और हमें देख करके तुम्हें लज्जा क्यों आई। मैंने कहा जैसे उन्होंने तो हमको देखा भी नहीं, और आप हमसे पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किशोरी के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने तो हमको लकड़ी के समान देखा, सूखे हुए काठ की भांति में देखा, हमको कोई लज्जा नहीं आई। जैसे वृक्ष खड़ा रहता है, स्त्रियां नंगी हो वहां पर खड़ी रह सकती है, कोई भी बात नहीं, वैसे हम लोगों ने उनको उन्होंने देखा और हम लोगों ने भी उनको देखा। ऐसे ये ऋषि वहां पर पहुंचे, परीक्षित महाराज जी इनको प्रणाम किया। वहां पर नारद ऋषि भी हैं जो व्यास जी के गुरु, और ये व्यास जी सुखदेव के गुरु और पिता दोनों ही हैं। इतने लोग रहते हुए भी सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, हमारे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है, जो अभी तुरंत मर रहा है, अभी तुरंत मर रहा है, हमारी बेटी ने बहुत सुंदर एक कीर्तन किया यहाँ पर कबीर जी का, ये संसार कैसा है, कागज की पुड़िया है, और एक बूंद जब उसमें पड़ता है तो क्या होना है, घुल जाना है। ये महल है कांच का, और उसमें एक थोड़ा सा कंकड़ लग जाने से ये चूर चूर होकर के गिर जाना है। वह एक महल है जिसमें आग लग जाना है और सभी कुछ रह जाना है। हमारे ऋषि महर्षि लोग इस परम सत्य को बहुत मधुर मधुर पदों के द्वारा, गायन के माध्यम से हृदय में पहुंचने वाली स्वर लहरियों से इसको बतलाया है। किंतु वो कान में नहीं जा करके मनोरंजन कर करके बस समाप्त हो जाता है। यदि वो कान में जाता, हृदय में जाता, उस पर हम विचार करते तो देखते भाई ये तो कागज की पुड़िया है, आज कल परसों वर्षों जरूर जाना है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मितस्य, जो जन्म लिया उसको मरना है। और यदि भजन नहीं किया तो जो मरा है उसको भी जन्म लेना है, और यदि भजन कर लिया तो फिर भी जगत में नहीं आना है। यही तो भवसागर है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी से वो पूछ रहे हैं, हमारा दो प्रश्न, जो अभी तुरंत मरने वाला है जिसके लिए समय एकदम नहीं है, और जो आज कल वर्षों 100 वर्ष 200 वर्ष जरूर मरना है हमको, जो भी लोग रहेंगे तो 700 वर्ष 800 वर्ष 1000 वर्ष। ब्रह्मा जी हैं तो अपने दिनों से पृथ्वी के मन से करी कर कितने करोड़ वर्ष तक उनकी आयु, करोड़ थोड़ी कितने हजारों करोड़ भाई, उनको भी मरना है, इंद्र को भी मरना है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, बदल जाते हैं इंद्र ना? तो इस तरह से सबको मरना है, हम सबको भी मरना है। कल हम बच्चे थे, आज प्रौढ़ हुए हैं, और परसों बूढ़े हो जाएंगे, और इसके बाद में देखेंगे नहीं। इसलिए इनका क्या कर्तव्य है, जो अभी मर जाएंगे और जो कल परसों वर्षों में मरेंगे उनका क्या कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी जी इसी के उत्तर में श्रीमद् भागवत का वर्णन किया। सुनो श्रीमद् भागवत, 7 दिन में तुमको तुम्हारी आयु है, 7 दिन तुमको भागवत सुनाएंगे, इसमें तुम अजर अमर बन जाएगा, और तुम्हारी समस्याएं जितनी हैं वो सुलझ जाएंगी। इसलिए जितनी भी सार्वकालिक समस्याएं हैं इस जगत में, जितनी तरह की समस्याएं हैं, भागवत के श्रवण से और मनन से जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है, इसलिए उसको सुना रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा देखो, सवई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रथो खजे अहेतुक अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध। यदि किसी को सुख और शांति पाना है इस जगत में, यदि नित्य काल के लिए सुख और शांति पाना है, तो भगवान के प्रति अहेतुकी भक्ति करो, अहेतुकी कॉजलेस, कोई हेतु नहीं हो, प्रभु हमारा बच्चा बीमार पड़ा है, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, हमें धन का अभाव है, हमको रोग है, इसके लिए नहीं, हमको वैकुंठ चाहिए, हमको स्वर्ग चाहिए, इस सबके लिए मांगो। इसके लिए बस अपनी सेवा प्रदान कीजिए, हमारा शुद्ध स्वरूप इसके अंदर में जो आत्मा का है, जो नित्य ही भगवान का दास है स्वरूपता, इसका उद्बोधन हो, मैं इसे जान सकूं और इसको रियलाइज करके, इसको अनुभूति करके मैं सदा के लिए माया से पार जाकर आपके चरण जुगलों की सेवा पा सकूं, इसका नाम भक्ति है। कैसे ये भक्ति होगी, इस जगत में साधन करते समय भी तैल धारावत अविच्छिन्न गति से चलेगी, ऐसा नहीं ये आज किया और कल नहीं किया, जैसे मधु की धारा ऊपर से एक तार जैसे लग जाती है, वैसे कृष्ण के प्रति चित्त की वृत्तियां अपने आप जैसे नदियां समुद्र पहाड़ से निकल करके समुद्र की तरफ में गिर जाती हैं, वैसे चित्त की वृत्तियां भगवान के चरणों में अपने आप लग जाए, इसको कहते हैं भक्ति। यदि कोई ऐसा कर सके तो उसका कल्याण होगा। इसलिए अभी जो तुम मर रहा है इसके लिए, अभी एक क्षण यदि आयु केवल है तो उसके लिए क्या करो, इतत निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगिनाम नित्निर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम्। यदि अभी चल कल्याण, कोई आदमी मर रहा हो, टट्टी हो रही है, पेशाब हो रहा हो, कहो जैसे कृष्ण नाम को राम नाम बोलो, और यदि संभव है गले में पानी जा सकता है तो तुलसी का जल और गंगा जल उसके मुख में दे दो, बस तखना दान पुण्य योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय कुछ भी काम नहीं करेगा, किंतु भगवान का नाम उसके कानों में जाकर के या यदि बोल सकता है एक क्षण के अंदर में अजामिल जैसे उसकी सुगति हो जाएगी, फिर माता जी के जन्म गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे गमनम, यही तो भव सागर है, इसको चुटकी बजाते ही वो पार कर जाता है। तो यदि एक मिनट का समय हो या नहीं हो, जब खनात वो मरने जा रहा हो, एरोप्लेन में जा रहा हो और एक्सीडेंट हो गया, अब बस वहीं से एक्सीडेंट होकर कब मरना ही है, बस कृष्ण नाम राम नाम बस करो, बस हो गया काम। लाख वर्षों के साधन से जो नहीं होगा उसका हो जाएगा, उसका बन गया जीवन, वो कभी मरेगा नहीं, कभी माता के गर्भ में नहीं आएगा। वो एक्सीडेंट आत्मा के ऊपर में कोई कार्य नहीं करेगा, आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत परम आनंदमय है, अनुभूति करना है बस। और अधिक दिन का समय कुछ हो, 7 दिन का 10 दिन का 20 दिन का पता नहीं कब मर जाएंगे, उसके लिए क्या करो, भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम कीर्तन करो। श्रमणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दक्षक्षात्म निवेदनम, भगवान की कथाओं को, भगवान का नाम कीर्तन करो। कलयुग का ये नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कलयुग का ये महामंत्र है। कल संतोपनिषद में ये लिखा गया है, ब्रह्मांड पुराण में लिखा गया है, ब्रह्म जामल में लिखा गया है, विष्णु जामल में लिखा गया है, इसके प्रमाण है। हमारा प्रमाण क्या है, हम किसकी बात मानेंगे, वेद जो कहते हैं, वेद का सार वेदांत शास्त्र है, उसका सार श्रीमद् भागवत है, गीता है, रामायण है। वेद कैसा है, नमकीन पानी का भंडार है, उसको पानी कोई नहीं पी सकता, एक चिड़िया भी पानी पी करके समुद्र का जीत नहीं रह सकती, और उसी का पानी भेपर होकर के ऊपर में उठ करके बादल के रूप में जब कि बरसता है तो सबका जीवन बन जाता है। तो ये वेद त्रिगुण विषया वेदा न त्रिगुण भवाग्न, वेद क्या है, त्रिगुण विषया सात्विक राजसिक और तामसिक है, उनमें से साधु संत लोग मंथन करके उसका क्रीम बाहर करके घी बाहर करते हैं, वो क्या है, श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर्गलितम परम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भोभा। निगम मने वेद, श्रुति उपनिषद, गीता भी एक उपनिषद है, इसका सार क्या है, श्रीमद् भागवत। इस भागवत का जो श्रवण करेगा वह रसिक और वह भावुक व्यक्ति श्रवण कर सकता है, वो दूसरों को भी संसार में सुखी बना देगा, अपने भी सुखी रहेगा। जैसे परीक्षित महाराज जी का 7 दिन श्रवण करने से कैसा हुआ, तो यदि अधिक दिन है जीवन तो कुछ भागवत का कथा सुनो। उन्होंने स्नान आरंभ किया, मैं उसमें से थोड़ा सा थोड़ी से एक झांकी देना चाहता हूं, जी भागवत में ये क्या चीज, कैसा रसीला ग्रंथ है, कैसे ये रसमय ये शास्त्र है। कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में चतुर्भुज के रूप में, जन्म नहीं प्रकट हुए, और वसुदेव देवकी दोनों उनको दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। और ठीक उसी समय में गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण बालक के रूप में जैसे जन्म होता है उसी रूप में गर्भ से निकले। मथुरा में उनका कोई भी उत्सव नहीं हुआ, किंतु गोकुल में उनकी नाड़ी छेदन हुआ, जात कर्म हुआ, ब्राह्मणों को दान दिया गया, सब लोगों ने देखा यशोदा जी के साथ में संपर्क है, इसलिए यहां पर जन्म लीला हुई। और वहां पर आविर्भूत हुए भगवान, जैसे खंभे से निकल सकते हैं, हवा से निकल सकते हैं, वैसे वहां पर जन्म नहीं हुआ, मथुरा में गोकुल में जन्म हुआ। बधाइयां बजी, नंद को आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर बधाइयां बजी, उत्सव हुए, गायों का दान किया। नंद बाबा जी ने अपने घर में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ दान दे दिया पुत्र के होने पर। पुतना आई, पुतना माने जो पवित्र नहीं है। भक्तों का हृदय पहले पहल में अपवित्र होता है, उसमें काम, द्वेष, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य होता है। भगवान अपने भक्तों को साधकों के हृदय से इन सबको दूर कर देते हैं। पुतना को उन्होंने सब गति देकर के माता की गति बनाई। ऐसा दयालु कौन जगत में है जो उनको मारने के लिए आई और उसको सुगति दे दी। इसके बाद में बहुत से असुर लोग आए, इसके बाद में तृणावर्त इत्यादि आए। 2.5-3 वर्ष की अवस्था में गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में पधारे। वहां पर वृंदावन में छठी करा में कृष्ण रहे नंद बाबा इत्यादि के साथ में, और श्रीमती जी का रावल में जन्म हुआ और वो पधारी राल नाम ग्राम में और बड़े हुए। वृंदावन में उन्होंने धेनुकासुर, अगासुर, बकासुर इत्यादि का वध किया और उनको सुगति दी, मोक्ष दे दी। जो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी लोग लाखों कोटि वर्षों में तपस्या करके जिस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, और वो पुतना इत्यादि उनसे द्वेष करके माता का वेश बनाया और उनको वो सुगति दे दी। इसके पश्चात वो गोचारण करने लग गए, गोपाष्टमी को आरंभ किया। इस तरह से वृंदावन की लीला समाप्त की और उसके बाद में नंदगांव में आए। नंदगांव से मथुरा वृंदावन में आकर के बंसी बट के नीचे जमुना के किनारे उन्होंने रास किया। तत्पश्चात उन्होंने केशी इत्यादि देवताओं का वध किया, गोवर्धन को भी धारण किया बीच में और सब लीलाएं की। इसमें से मैं 21वें अध्याय पर गोपी गीत के संबंध में कुछ आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। भजन कैसा होना चाहिए? संसार में सबसे श्रेष्ठ गोपियों का कृष्ण के प्रति भजन है, इससे बढ़कर क्या कोई भजन नहीं है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तद धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना बजु वधु वर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदं तत्प्रादोहम। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने यही उपदेश दिया। श्रीमद्भागवती पुराण है जो कि अमल विशुद्ध संतों के लिए ये अमल प्रमाण है। ये जो कहते हैं वो परम सत्य है। दूसरी बात, गोपियों की आराधना है कृष्ण के प्रति, वो सर्वश्रेष्ठ आराधना है, इनसे बढ़कर के किसी की आराधना नहीं हुई। तीसरी बात, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हमारे आराध्य हैं। ये ब्रजेंद्र नंदन कौन? ब्रजेंद्र हैं नंद बाबा और ब्रजरानी यशोदा जी हैं। इनके जो पुत्र हैं वो हमारे आराध्य हैं। मथुरेश कृष्ण द्वारकाधीश उन्हीं के प्रकाश भेद है, रामचंद्र उन्हीं के ही वही है, रामचंद्र भी हुए हैं। दशावतार भी कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, दूसरे नहीं है, सभी एक तत्व है। तत्व की दृष्टि से उसमें कोई छोटा बड़ा मत समझो, एक ही चीज है। जैसे पूर्णिमा का चांद है और उसका एक हम देखते हैं तो प्रतिपद कहते हैं, जब तीन कलाएं देखते हैं उसे तृतीया कहते हैं, आठ जब होती है कलाएं तो उसको अष्टमी कहते हैं, किंतु है एक ही चंद्र, अलग अलग नहीं है। इसलिए ये मत समझो कि हिंदू लोग सनातन धर्मी वाले लोग लाखों देवता और देवियों की उपासना करते हैं, हम एक करते हैं, यह बात गलत है। एक ही कृष्ण की बहुत से ये प्रकाश भेद है। किस लिए? अधिकारियों के भेद से। और जगहों में कोई अधिक क्लास नहीं है, किंतु भारत के सनातन धर्म में ये क्लास है। प्रारंभ से क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब श्रेणियां हैं। उपासना की। यदि नीचे का व्यक्ति है तामसी भाव से भरा हुआ, वो उत्तम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता है, इसलिए प्रारंभ से क ख ग घ से च। इसलिए हम लोगों के भारतवर्ष में बहुत सी श्रेणियां हैं, इसलिए उत्तम श्रेणी में जाने के लिए है। जिसने कभी क्लास ए नहीं पढ़ा, क्लास फोर पास नहीं किया, लोअर क्लास पास नहीं किया, वो कैसे एमबीए पीएचडी हो सकता है? यह असंभव है। इसलिए ये सब श्रेणियां हमारे यहाँ है, अलग अलग उपासना नहीं है। कुछ लोग ऐसा आक्षेप करते हैं, सुनते यह सर्वथा गलत बात है, नहीं समझने के वजह से। तो ये कृष्णचंद्र जी वृंदावन से यशोदा मैया के जो पुत्र हैं, यही हमारे आराध्य हैं, सब आराध्य, और गोपियों की आराधना श्रेष्ठ है। ये कहां पर? वृंदावन में ही है, यहां रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। वृंदावनम प्रत्यज पाद एकम न गच्छति, कहीं नहीं जाते हैं। कौन सा वृंदावन? कृष्ण गोचारण के लिए गए हैं। अब उनकी उम्र 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष की हो रही है। पौगंड अवस्था से अब किशोर अवस्था में पदार्पण कर रहे हैं। पहले बड़े नटखट थे, ऐसा कोई ब्रज में घर नहीं जहां पर कि उन्होंने चोरी नहीं की मक्खन की। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई गोपी नहीं जिसका हृदय नहीं चोरी कर लिया, जिनका बदनम मधुरम, गमनम मधुरम, हसनम मधुरम, हसितम मधुरम, बोलन मधुरम, उनकी बंसी मधुरा, उनका सब कुछ मधुरा, उनकी मैया मधुरा, उनके पिताजी मधुरा, उनका वृंदावन मधुर, उनका चलना फिरना सभी कुछ मधुर ही मधुर है, और कुछ अलग। उनका स्वरूप कैसा मधुर है, उनकी बोली कैसी मीठी है, मधुर से भी अधिक मीठी है। उनकी बंसी की तान कैसी है, यदि कान में पड़ गई तो हृदय को वो चोरी कर लेंगे। ऐसे उनकी ये सभी चीजें हैं। गोपियों ने उनको दूर से भी देखा, जिन लोगों ने देखा वही मुग्ध हो गया। कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, यशोदा मैया उनको सजाया, मयूर के पंख यहां लगा दिया, रामचंद्र जी काक के पंख रखते हैं और ये रखते हैं मयूर के, बंसी उन्होंने ली, पीताम्बर धारण किया, कैसा वेश, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंती शमालम रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम सबदर्वणम प्राविशत वीत। अलविदा, सौंदर्य की एकदम परिपूर्ण उनका शरीर ही मधुर है, वो प्रेम की मूर्ति है। कृष्ण का जो कुछ अवय है, अंगों का, वो सब प्रेम ही प्रेम है। वन में जा रहे हैं, लाखों गायें हैं, नंद बाबा की 9 लाख गायें और वृषभानु महाराज की 11 लाख, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं सीदामा जी, सीदाम यशोदा राधा जी के भैया, और ऐसे ही उपानंद इत्यादि लाखों गोपों गोपों की करोड़ों करोड़ों अनगिनत गायें, कोई श्यामली, कोई सफेद, कोई कुछ, कोई कुछ, हाँ एकदम बड़े बड़े। अभी हम हॉलैंड में गया था, मैं गया था, देखा जो लाखों गायें, हाँ इतने भरे गायें चल नहीं पा रहे। हम समझते हैं कि 20 किलो 25 किलो शायद दूध देती हैं एक बार, ऐसी सुंदर सुंदर गायें, खुदकते हुए बछड़े, और उन सबको लेकर के गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। हजारों सखा लोग उनके साथ में जा रहे हैं, सभी बंसी बजा रहे। कृष्ण का रूप कैसा? नवीन मेघ जैसा, श्याम वर्ण का, अभी पानी बरसने वाला है, और उसको पीताम्बर ऐसे फहरा रहा है मानो ये विद्युत, स्थिर विद्युत है, बिजली, बिजली तकड़कती है और एक सेकंड में चली जाती है, और मानो इनका पीताम्बर नवीन मेघ के ऊपर में, श्याम मेघ के ऊपर में बिजली है। मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बजा रहे हैं। आंखें कहां है? आंखें किसी की प्रतीक्षा में या खोज में है। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी खोज में होंगे। श्रीमती राधिका जी गोपियों के लिए आंखें खोज रही हैं और बच्चे सब कन्हैया की जय हो कन्हैया की जय हो करते हुए और चारों तरफ से घेर करके चल रहे हैं। एक कनेर का फूल पूला हो पीला होता है, शायद आप लोग जानते हो, भारतवर्ष में होता है, इधर होता है कि नहीं। कृष्ण के पीताम्बर जैसा ही रंग उसका, और उसको कभी इस कान पर रखते हैं, मधुबाला है तो कभी इस कान पर रखते हैं और कभी इस कान पर रखते हैं और बड़ी शान से मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। प्रत्येक मधु वृंदावन का पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य पुरुष स्त्री वृद्ध बालक सभी मुग्ध हो रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलने लग गए। कृष्ण ने बहुत शपथ देकर के उनको मना किया। गायें खड़ी हैं, डकार रही हैं, कृष्ण आएगा तब हम चलेंगे। कृष्ण को देखते ही उनके स्तन से दूध झरने लगते हैं, उनके बच्चे आएंगे तो नहीं देंगी। और कृष्ण को जहां देखा स्तन से अपने आप दूध झरने लगता है। आगे प्रवेश किए, कृष्ण के चरण छोटे छोटे बड़े सुंदर, उसमें 19 प्रकार के चिन्ह हैं। पृथ्वी पर जब रखते हैं तो पृथ्वी पुलकित हो जाती है, कहीं कंकड़ी इत्यादि नहीं, घासों से भर जाती है, रोमांच हो उठता है, खिल उठती हैं आनंद से, किस जैसे कि बेली चमेली फूल इत्यादि अपने आप खुल जाते हैं। ये माने हंस रही है पृथ्वी, पृथ्वी इस प्रकार से कर रही है। और कृष्ण इसी प्रकार से एक वन से दूसरे वन में, भांडीर वन से भद्र वन में, वृंदावन से कुमुद वन में, मधुवन में ताल वन में चढ़ाते हुए गायों को आगे बढ़ रहे हैं। किंतु गोपियों की स्थितियां क्या है, यही हम लोग थोड़ा सा वर्णन करेंगे। गोपियां कहती हैं परस्पर परस्पर, कृष्ण वन में है, आंखों से देख रही हैं, कैसे बैठी हैं, उनके ग्रुप अलग अलग हैं, बहुत तरह की गोपियां होती हैं, कोई स्वपक्ष की गोपी, कोई विपक्ष की गोपी, कोई तटस्थ गोपी, कोई सुहित गोपी, कोई प्रिय नर्म सखी, कोई कुछ, करोड़ों प्रकार के उनमें भेद हैं। विपक्ष वाली सखियां हैं वो चंद्रावली पद्मा इत्यादि हैं, स्वपक्ष की श्रीमती राधिका ललिता विशाखा, सुहित पक्ष की श्यामला सखी हैं और तटस्थ की हैं भद्रा इत्यादि सखी। अपने अपने ग्रुप में जिनका जैसा ग्रुप है वो अपने अपने घरों में कुंजों में कहीं पर बैठी हुई और कृष्ण के संबंध में बातचीत कर रही हैं। उनके कृष्ण का रूप वर्णन करने में, उनका दर्शन करने में ऐसे तन्मयी हो गई और ऐसे बातचीत करने में अपने को भूल गई। भजन तो धीरे धीरे बोलते 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 भूल गई ये मैं कहां बैठी हूं और क्या कर रही हूं, और तन्मय होकर के उन्हीं की चर्चाएं करने लग गई। चर्चाएं क्या करती हैं, अखनतां फलमिदं न परम विदा सख्या पशून अनुविवेश यतोर्वयस्यै वक्त्रं प्रजेश सुतयो अनुबेनु युष्टं पीतं निपीतं कटाक्षमोक्ष। गोपियां कह रही हैं यदि किसी को आंखें हैं नेत्र हैं तो नेत्रों का क्या फल है, बस एक यही फल है, दूसरा फल नहीं मैं जानती। मैं नहीं जानती ये आंखों का क्या फल है, बस एक ही फल हम जानती हैं, दूसरा फल नहीं। यदि कृष्ण का दर्शन कर लिया तो वो आंखों का दर्शन करने का ये फल है आंखों का, और नहीं तो ब्रह्मा वज्र गिराए या भगवान वज्र गिराए और वो आंखें फूट जाए तो बल्कि अच्छा है। बस कृष्ण का रूप जिन्होंने दर्शन कर लिया उसका आंखें सार्थक हैं, अन्यथा वो बेकार की हैं। भगवान ने इसीलिए आंखें बनाया, किसके लिए? कृष्ण का दर्शन। कौन सा कृष्ण का? उसी के लिए वो वर्णन कर रही है, अक्षणतां फलमिदं न प्राप्तिया। एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही है, देखो कृष्ण सखामुख से घिरे हुए लाखों गायों को लेते हुए एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं। ओहो चलो अभी हम दर्शन कराएं। वो सखी कहती है कैसे संभव है, हमारी सास तो डोकरी तभी पड़ी हुई है, डोकरी माने जानते हैं ना बुढ़िया, ये जाने नहीं देगी डोकरी, और ननद जो है ना भारी कपटी है, वो मेरा केवल दोष देखती है, और पति मेरा अभिमन्यु अभिमान में भरा हुआ है, यदि सुन लिया कभी ये कहीं घर से दहली से पैर रखा तो पैर तोड़ देगा। देखो धीरे धीरे बातचीत करो, अधिक जोर से मत बात करो, यदि सुन लेंगे तो देखो बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी। कहती दूसरी कहती है जी बकने दो उनको, अखंडतां फलमिदं न परम विधाम। अभी यदि कृष्ण चले जाएंगे फिर दर्शन नहीं होगा, अभी निकल करके चलना है। कृष्ण का वो वर्णन, वक्त्रं ब्रजेश सतयो अनुवेणुजुष्टम। कृष्ण के सुंदर मुखारविंद कैसे हैं जो पहले वर्णन किया, बरहा पीड़म नटवर बहु श्यामं हिरण्य परिधिम। ये श्रीमद भागवत के मार्वल से श्लोक हैं, कृष्ण का रूप का इससे सुंदर वर्णन कहीं नहीं है जो ये गोपियां वर्णन कर रही हैं। तो वो कह रही हैं, वक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम, गायों को चराते हुए जा रहे हैं, सौंदर्य उनका निखरता हुआ पिघल पिघल करके गिर रहा है, आज पृथ्वी धन्य हो रही है, सारा विश्व धन्य हो रहा है उनके इस लावण्य से। कृष्ण क्या करें, ब्रजेश सुतयो, थोड़ा सा संस्कृत जानने से सुविधा होती है, ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश के जो लड़के हैं कौन, कृष्ण और बलराम। यहां पर कृष्ण तो ब्रजेश के लड़के हैं नंद बाबा के, और दूसरे बलदेव जी किसके बेटे हैं, ये तो वसुदेव जी के बेटे हैं ना, किंतु यहां पर दोनों को ब्रजेश कहा गया इसलिए कि बलदेव जी ने कहा है मैं अपने पिता को नहीं जानता, जो हमारे पिता हैं, जो हमारी रक्षा के, जो पिता ने हमको त्याग कर दिया बचपन में ही, मैंने पिता को देखा ही नहीं, जिस नंद बाबा ने, यशोदा ना मैया ने, रोहिणी मैया ने हमको पाला है, वही रोहिणी मैया और यशोदा मेरी मैया है, और नंद बाबा ही हमारे बाबा है, कृष्ण हमारा छोटा कन्हैया भैया है, मैं इसके अतिरिक्त और नहीं जानता। इसलिए पिता कौन है, बहुत से पिता हैं, एक तो जिसने जन्म दिया, दूसरा जिसने पाला पोसा, तीसरा स्त्री का जो पति होता है वो भी पिता है, स्त्री का पिता वो भी पिता होता है, इस तरह से बहुत से पिता हैं। कभी कभी राजा को भी मान लिया जाता है, यदि वो हमारा पालन पोषण करता है तो उसको भी पिता मान लिया जाता है, और भगवान तो पिता है ही है,
गुरु पिता,
गुरु को भी पिता कहते हैं, पुरोहित जो होता है, पुरोहित जो ये सब दीक्षा इत्यादि दान करता है, जनेऊ संस्कार इत्यादि उपनयन का संस्कार, वो भी पिता है, किंतु हम तो नंद बाबा को ही जानते हैं, इसलिए यहां पर कहा गया कि ब्रजेश सुतयो, नंद बाबा के ही पुत्र कौन, बलदेव और कृष्ण। कैसे कैसे जा रहे हैं, वक्त्रे वक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम, अनु माने निरंतर जो वेणु बजा रहे हैं दोनों, अथवा गोपियों का अभीष्ट ये नहीं कहना है कि बलदेव जी को भी दर्शन करना चाहती हैं, बलदेव जी पास में रहने से रसाभास दोष हो जाता है, हमारे भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में स्त्री अपने पति के बड़े भाई को भी ससुर के रूप में देखती है, कभी उसका स्पर्श नहीं होता, होने से यह दोष होता है, अपनी बेटी के समान उस अपने बड़े अपने छोटे भैया की पत्नी को बेटी के समान देखता है। इसलिए उसके सामने में कृष्ण और राधा जी गोपियां नहीं मिल सकती। इसलिए गोपियों का तात्पर्य हृदय का यह है, जो उसमें से जो छोटा सा है, कौन सा जो बंसी बजा रहा है, जो आगे सिंगा बजाता हुआ निकल गया है, उसके पीछे से जो जा रहा है, जो बंसी बजा रहा है, उसका मुख दर्शन करो, वो जो वेणु बजा रहा है, जिसकी करुणा के नेत्र से करुणा से बरस रही है, प्रेम बरस रहा है जिनके आंखों से, उसका यदि कोई दर्शन कर लिया तो जीवन सार्थक हो गया। पुनः कोई गोपी कह रही है, इससे भी और इसका और अर्थ आगे बढ़ा करके, ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश दो है ब्रज में, एक नंद बाबा जी ब्रजेश है और दूसरे कौन है, उनसे बड़े हैसियत वाले राधा जी के पिता विश्वानंद महाराज जी, जिनकी 11,00,000 गायें हैं, वो ब्रजेश है। तो ब्रजेश एक जो नंद है उनका सूत और उनकी सूता ब्रजेश की, ये हो गया सूतयो, सुताश्च सुतयो, ब्रजेश की लड़की राधा जी और इधर में नंद बाबा के लड़के कृष्ण, ये दोनों जब परस्पर को देख रहे हैं, अनुबेनु जुष्टम, कृष्ण ने मधुर बंसी बजाई और राधा जी ने उसे ले लिया और वो बजाने लगी, कृष्ण उसके ये बजाने लगे हाथ ऐसा करने लगे और राधा जी उसमें से फूंक दे करके उसमें सुंदर से मधुर स्वर निकाल रही है, अनुबेनु जुष्टम, पहले कृष्ण ने बजाए उसी को अनु पीछे से, अनुमाने पीछे से राधा जी ने बजाया और कृष्ण बड़े करुण नेत्र से राधा जी के तरफ में प्यार से देख रहे हैं और राधा जी उनके तरफ में देख रही हैं। इस दृश्य को जिन्होंने देखा उनका जीवन सार्थक है, उनकी आंखें सार्थक है, ये गोपियां कह रही हैं। देखो धन्यास्म मूढ़ मतयो अपहरण्य एता जानंद नंदनम उपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराम पूजां दधौ विरचितां प्रणयालोदौ। गोपियां कर रही हैं एक दूसरे से, क्या कर रही थक जाइए,
40 मिनट मेरा भूल गई,
कर रही हैं दो के गोपियां कर रही हैं, ओहो इन हिरणियों को तो देखो इनका जीवन सार्थक है, आगे आगे हिरणी चल रही है, पीछे से हिरण चल रहा है, एक होता है कृष्ण सार हिरण, उसके काले काले चिन्ह होते हैं, धारियां होती हैं, और हिरणी आगे चल रही है, पीछे से उसका पति कृष्ण सार, अर्थात कृष्ण को ही अपने जीवन का सार बना लिया है, वो कह रहा है जैसे चलो आगे आगे, हिरणी आई, कृष्ण मधुर बंसी बजा रहे हैं, उनके पास में खड़ी हो गई और प्रणय से भर करके बड़े प्रेम के साथ में अपने मुख को कृष्ण के तरफ में लगा दिया और बड़े प्यार से देखने लगी थी। हिरण कहता है कोई डर की बात नहीं, और को कहने दो, तुम खूब प्रेम से इनकी बंसी सुनो और इनका रूप दर्शन करो, तुम्हारा और मेरा जीवन धन्य हो जाए। गोपियां कहती हैं गोप्य धन्य आश्व मूढ़ मतयो, हिरणी तो मूढ़ है जानवर, जहां आदमी को देखती है भाग जाती है, आज ये कृष्ण के निकट आकर के बंसी ध्वनि सुनकर के आस्वादन कर रही है और आंखों में पलक नहीं लगा रही, अपलक दृष्टि से कृष्ण की तरफ में देख रही है और प्रणय की भीख मांग रही है, आपका प्रणय हमें दीजिए, मैं आपकी सेवा कर सकूं, ये मूढ़ जो हरिण है ओहो हमारा जीवन बेकार का गया, व्यर्थ गया, हमारा पति हमारा विरोधी, हमारी सास हमारी विरोधी, हमारी ननद हमारी विरोधी, हमारे माता पिता विरोधी, कृष्ण के पास में मिलने नहीं देंगे, यदि देख लिया जे कृष्ण से कहीं मिल गई तो हमारे लिए जीवन भी दुभर हो गए। गोपियां कहते हैं कि अभी मरेंगे हम, मर करके हिरणी का जन्म लेंगे और कृष्ण से मिलेंगी, आज हिरणियों का जन्म सार्थक है, हम भी हिरणी होकर के आएंगे। गोपियां ललक रही हैं, कहां पर, घर में बैठी हुई हैं और अपने सखियों से बातें कर रही हैं। एक दूसरी सखी कहती है क्या, कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सवरूपशीलम सुत्वाच तत्कोय वेणु विविक्त विचित्र गीतम दिव्यो विमान गतया स्मरण निस्वारा भत्सत प्रसून कबया मुमुहुर हो। अरे ये तो मृगों की बात छोड़ो, देखो जो आकाश में विमान से देवता लोग कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनने के लिए आ रहे हैं, उनकी गोदी में उनकी पत्नियां बैठी हुई हैं, कृष्ण का रूप देखा और वंशी सुना, ओह कैसा आश्चर्यजनक चीज। जहां वेणु की ध्वनि उनके कानों में गई और कृष्ण को देखा वेणु बजाते हुए, उनके पतियों ने नहीं देखा, उन्होंने वेणु की ध्वनि थोड़ी सी सुनी, कृष्ण का रूप और इतना मादकता उसमें है जो सबको पागल कर देगा, वो चीज उन्होंने नहीं देखा, उनका भाग्य नहीं है इतना, क्योंकि पतियों ने देखा और पतियों की गोद में उनके केस खुल गए, उनके फूल नीचे गिरने लग गए, उनकी वेणी क्या कहते हैं उसको, घंघरा, उनका घंघरा लहरा
लहंगा
लहंगा, उसकी डोरी खुल गई और अपने पतियों की गोद में मूर्छित हो गई, विवश हो गई। ओहो कितना इनका जीवन सार्थक है, यदि मर करके हम इन देवताओं की स्त्रियां बन जाती, इनके पतियों ने उनके बड़े लाड प्यार से उनको पुचकार करके उनको सलाह करके उनकी रक्षा की, और हमारे पति हमारे इतने विरोधी, हम मर करके देवताओं की स्त्रियां बनेंगी और बन करके कृष्ण का रूप देखेंगी। किस तरह से कोई कह रही है, ओह देखो तो बाहर आ रहा है, अरे उनके बछड़ों को तो देखो, बछड़े दूध पी रहे थे और जब ही कान में बंसी की ध्वनि आई, दूध यहां पर लहा रह गया, वो नीचे नहीं गया ना ऊपर आया, और बस ऐसे चुपचाप आंख बंद करके बस कान ऐसे कर रहे हैं। वो बछड़े होकर के हम जन्म लेती, गायें होकर के हम स्वच्छंद गति से कृष्ण की हम सेवा कर सकती, उनके पास में चली जाती, आज हमें वो सौभाग्य नहीं। और देखो तो ओहो बतांग विहगा मनोयो बनस, ओ, ये पक्षी जो पेड़ों पर बैठे हुए हैं वृंदावन में, गोवर्धन की तराई में, कदम्ब के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, कटहल के वृक्ष हैं, कोई कदम्ब के वृक्ष हैं, उनकी डालियों पर बैठे हुए कौन, सुख पक्षी, कोयल, मयूर, पपीहा, पपीहा क्या कहता है, पी कहां प्यू कहां कहता है, और कोयल क्या कहती है, राधे राधे रूप में कुहू कुहू, कौन कौन, मयूर के का के माने कौन, राधा जी के मान और धज्य को, के पर्वत को कौन गिरा सकता है, कृष्ण। और राधा जैसे मतवाले हाथी को, प्रेम के जो मतवाले हाथी हैं, इनके पैरों में सिकल कौन बांध सकता है, राधा जी का प्रेम और दूसरा नहीं, वो इसलिए के का कौन, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, एक राधा जी के लिए एक कृष्ण के लिए। सारे पशु पक्षी, अरे वहां के मथुरा के चौकीदार लोग रात में जगाते हैं लोगों को, तो क्या कहते हैं, राधे राधे, वृंदावन के चौकीदार कहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी राधे राधे राधे, कृष्ण का उतना नहीं, राधे जी का वहां पर इतना है ना? तो ये कहते हैं, देखो ये मुनि लोग हैं पेड़ों पर बैठे हुए। मुनि दो प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म सभी ब्रह्म ही ब्रह्म, तत्त्वमसि तुम ही वही हो, ये वेद की एक डालिया है उपनिषद वाली, और दूसरी डाली एक है जो वृंदावन में आई है, वो प्रेम की डाली है, उस पर कोयल पपी है सुख पक्षी उस पर बैठते हैं, ये लोग क्या करते हैं, भगवान को देख करके इनका गुणानुवाद करते हुए मयूर नाचते हैं, कोयल कुहक कुहक करके कृष्ण का गुणगान वर्णन करती है, सुख पक्षी लोग क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण ये सब राधे राधे, कोई कृष्ण की महिमा कोई राधे जी की महिमा, ये लोग वैसे मुनि हैं। अर्थात तो इस तरह जो वृंदावन वाले हैं ये लोग वृंदावन में हैं, ये लोग में से जो कर्मकांडी लोग हैं जो भगवान की उपासना करके भी उनसे संसारिक वस्तुओं को मांगते हैं वो कर्मयोगी हैं, वह वेद के रज्जुओं से तामसिक सात्विक और त्रिगुणमयी रज्जु से वो बधे हुए जगत में जन्म और मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। दूसरे होते हैं ब्रह्म योगी, संसार का कुछ नहीं चाहिए कि उनको मुक्ति चाहिए, मुक्ति माने क्या है, मुक्ति कहते हैं मुक्ति ही तू अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, ठीक है मैं समाप्त करता हूं। तो मुक्ति किसको कहते हैं, उन लोगों की ये धारणा है कि मैं ही ब्रह्म हो जाऊंगा, किंतु कभी भी कोई ब्रह्म नहीं हो सकता, जीवात्मा सदा ही जीवात्मा है, कोई भी ब्रह्म न हुआ न आज तक, शंकराचार्य भी ब्रह्म नहीं हुए, उन्होंने अंत में यही गाया गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मूढ़मते, ये क्या ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान कर रहा है, कोई भी ब्रह्म नहीं बन सकता है। इसलिए कहते हैं ये सब कैसे हैं, ये लोग गान करते हैं कीर्तन करते हैं भगवान का नाम कर करके और कीर्तन करते हैं नृत्य करने लगते हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग कृष्ण को देख रहे हैं। आ नदी यमुना, यमुना जी को तो देखो कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके वह स्तब्ध हो गई है, और नीचे जो जा रहा था पानी वो ऊपर आने लग गया कृष्ण की बंसी ध्वनि से, समाप्त कर रहा है, और ऊपर से पानी आ रहा है वहां पर भ्रमर पड़ गया, फूल उसके टूट गए कमल के, और उसको लेकर के कृष्ण के चरणों में उपहार दे रही है, और देखो तो इस तरह से ये गोपियां घरों में बैठी हुई कृष्ण के ये सब लीलाओं का वर्णन कर रही है। यदि कोई साधक सच्चा हो और श्रीमद् भागवत यदि सुना हो इन लीलाओं का इसी तरह से स्मरण करता हुआ जीवन बताए, सहजी रूप में भगवान की कथाओं का गुणगान करता हुआ कृष्ण के उस परम धाम को वृंदावन जो रसमय है उस रसमय वृंदावन में जाकर के रसमय जो राधा कृष्ण है उनकी सेवाओं को पा सकता है सहज रूप में। आज मैं यही पर समाप्त करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्य आप एक कीर्तन अभी दो मिनट में कर करके और इसको समाप्त, कोई कृष्ण संबंधी कीर्तन करेंगे।
यहाँ पर स्वामी जी का जो वर्णन है कृष्ण और राधा का वो सुन रहा था, लगता था जैसे मैं वृंदावन में पहुंच गया हूँ, ऐसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, एक आर्टिस्ट जैसे पेंटिंग करता है और आपको सारा दृश्य दिखाता है, स्वामी जी ने इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया कि लगा कि सब चीज आपके सामने हो रही है, इसके लिए हम स्वामी जी के बड़े आभारी हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे हैं, दे शुड नो दिस आल्सो, जन्म और मृत्यु स्वामी जी ने बताया, जो बहुत पीछे है बहुत पीछे है उसको सीखने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होता है बढ़ता है, ये जो हाथ है पांव है एक सिंगल बर्ड में पैदा होते हैं और वहीं से मृत्यु शुरू हो जाती है। अगर सेल की मृत्यु ना हो तो हमारी पांच उंगलियां ना बने, मृत्यु नहीं होने से सिम डेक्टाइली हो जाती है, उंगलियां सटी रह जाती हैं। आप देखे होंगे कुछ बच्चों में ऐसा हो जाता है, तो मृत्यु हमारी माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जो हमारे शरीर में वो क्षेत्र है जैसे मुंह है नाक है और भी जितनी ओपनिंग्स हैं, अगर वहां सेल न मरे तो ये ओपनिंग ना हो हमारे बॉडी में। कुछ बच्चे ऐसे अनफॉर्चुनेटली पैदा होते हैं जिनकी ओपनिंग नहीं होती, तो मृत्यु तो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। तो हमारा धर्म जो है हजारों वर्ष पहले इस चीज को जाना है, आज का विज्ञान अभी जानने की कोशिश कर रहा है, बहुत पीछे है बहुत पीछे है। तो आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से हम स्वामी जी का बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी आंखें खोली, और हम प्रार्थना करेंगे जब भी स्वामी जी आए यहाँ पर हमको आके मार्गदर्शन जरूर करें। धन्यवाद।
Thank you.